हरे कृष्णा। तो आज विशेष दिन है, आज विशेष दिन है क्या? जहनू सप्तमी आज विशेष दिन है, और वैसे भी विशेष समय चल रहा है। क्या है? चंदन यात्रा। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू हुई 2 मई से, कब तक चलेगी? 21 दिन तक है, यानी 22 मई तक चंदन यात्रा चलेगी। तो चंदन यात्रा की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, शायद आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना? और क्या चल रहा है? तुलसी शालिग्राम जलदान कब से शुरू हुआ था? मेष संक्रांति। ये जो तुलसी शालिग्राम जलदान है, इसका नियम है कि ये चंद्रमा के अनुसार जो तिथियां आती हैं उससे नहीं होता है शुरू, ये सूर्य के अनुसार जो महीना शुरू होता है उससे शुरू होता है तुलसी शालिग्राम जलदान का, है ना? तो सूर्य के अनुसार महीना शुरू होता है संक्रांति से। तो 12 राशियां होती हैं साल में, और सूर्य जो है साल भर में 12 राशियों में प्रवेश करता है, ठीक है ना? तो जो मेष संक्रांति आती है, ये सबसे पहला महीना है सूर्य के अनुसार, जो वर्ष का सबसे पहला महीना शुरू होता है वो मेष संक्रांति से शुरू होता है। 12 राशियों में सबसे पहली राशि कौन सी है? मेष है ना? नहीं जानते। मेष राशि सबसे पहली। तो मेष संक्रांति से सबसे पहला महीना शुरू होता है सूर्य के अनुसार। तो ये मेष संक्रांति से अगला जो महीना शुरू होगा वृषभ संक्रांति, तो उसके एक दिन पहले समाप्त होता है महीना। तो दूसरा महीना शुरू होगा वृषभ संक्रांति से। तो ये एक महीने के लिए तुलसी शालिग्राम जलदान होता है। इसका कारण क्या है? कौन बताए इसका कारण? इसका कारण ये है कि शालिग्राम भगवान जो है उनका जो शरीर है वो दूसरे प्रकार का है, हम लोगों का शरीर दूसरे प्रकार का है, तो उनको सर्दी गर्मी की जो अनुभूति है वो दूसरे प्रकार से होती है, और हम लोगों को सर्दी गर्मी की अनुभूति दूसरे प्रकार से होती है। तो हमारे लिए गर्मी का समय, ज़्यादा गर्मी का समय तो आगे चल करके आएगा, लेकिन शालिग्राम भगवान के लिए जो है ज़्यादा गर्मी का समय यही होता है एक महीने का मेष संक्रांति से, ठीक है ना? उनका जो शरीर है वो पाषाण का है, तो उसमें जो है उनको सर्दी गर्मी की जो अनुभूति है वो अलग प्रकार की होती है ना? तो उनके ऊपर जो है एक एक बूंद जल डाला जाता है जिससे उनको गर्मी ना लगे, गर्मी से रक्षा करने के लिए, है ना? लेकिन शालिग्राम को तुलसी वृक्ष के नीचे रखा जाता है। यहाँ पर क्या आप लोगों ने अलग रखा है क्या शालिग्राम को? तुलसी अलग रखा, शालिग्राम अलग रखा है? लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि शालिग्राम को तुलसी के नीचे रखें और एक ही मतलब व्यवस्था से दोनों को जल मिलेगा, कि तुलसी महारानी को शालिग्राम के शरीर का जो जल है वो प्राप्त होगा तो वो बहुत प्रसन्न होगी, आप समझे? तो हमारे मंदिर में आप देखेंगे तो अलग नहीं है, शालिग्राम को अलग नहीं रखा गया है, तुलसी के नीचे शालिग्राम को रखा गया है, और उसी से जो है जो शालिग्राम को जल प्राप्त होता है वो तुलसी जी को प्राप्त होता है, तो वो तुलसी जी की प्रसन्नता है कि शालिग्राम भगवान का जल उनको प्राप्त हो, दोनों की प्रसन्नता एक साथ होती है। तुलसी के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे मिट्टी में, मतलब उनका जो सिंहासन है वो तुलसी वृक्ष के नीचे जमा दिया जाए, और उसमें जो है जल डालेंगे तो शालिग्राम जी को जल मिलेगा, वो तुलसी को भी मिलेगा, ठीक है ना? यही विधि है। बाकी आप लोग अगर कुछ जानते हैं तो, मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने क्या समझा है, कैसे उसको किया है, अगर कुछ और विधि हो, लेकिन जो लिखा है हमारे वैष्णव कैलेंडर में शालिग्राम तुलसी जलदान है ना, तो उसमें एक साथ ही जो है मतलब जलदान किया जाता है। वास्तव में शालिग्राम जी को जो है ठंडक की आवश्यकता है, कि बूंद बूंद जल चाहिए, तो फिर तुलसी महारानी उसका लाभ उठाती हैं, तुलसी महारानी उस जल का लाभ उठाती हैं कि उनको जो है जल क्यों ना मिले, क्योंकि वो पत्नी है, शालिग्राम भगवान की पत्नी है, है ना? तो उनकी भी काफ़ी विस्तृत कथा है तुलसी शालिग्राम की, लेकिन हमने आज विचार किया कि आज का जो दिन विशेष है जाहनु सप्तमी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष रूप से गंगा जी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं जाहनु सप्तमी में क्या विशेष घटना हुई, कौन बताएगा? जाहनु, हाँ बताइए। जाहनु मुनि ने गंगा को पी लिया है ना, तो बहुत विशेष घटना है, तो इसको याद करना चाहिए कितना मतलब ये शक्ति है किसी व्यक्ति के अंदर, कितनी शक्ति हो सकती है कि गंगा जी को पी ले है? और फिर दूसरी शक्ति कि गंगा जी को अपने शरीर से निकाला ले, है ना, कहाँ से निकाला है जी? जंगल से निकाला, लेकिन कहीं पर लिखा है दाहिने कान से निकाला, जो भी हो, क्योंकि श्रीमद् भागवत नवे स्कंद में इतना ही लिखा है कि उन्होंने गंडोसी कृत्य यो पिबत, तस्य जहनु सुतो गंगाम गंडोसी कृत्य यो पिबत, कि उन्होंने जो है एक घूंट जल बना लिया गंगा जी को और पी लिया, अपनी अंजलि में जो है मतलब उसको लिया, अंजलि भर करके आप क्या एक घूंट में पी लेते ना, जितना पानी आया है अंजलि में पी लिया गंगा जी। तो बात क्या थी, कारण क्या था कि जहनु ऋषि ने जो है गंगा जी को पिया, कारण क्या था? डिस्टर्बेंस, हाँ डिस्टर्बेंस हुआ था उनको, डिस्टर्बेंस हुआ था। और जहनु द्वीप है भी नवद्वीप में, एक द्वीप उनके नाम से है जहनु द्वीप, है ना। तो जहनु ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे और गंगा जी उधर से प्रभावित हो रही थी। गंगा जी कहाँ जा रही थी? हाँ समुद्र में तो खैर जाना ही था, लेकिन गंगा जी जा रही थी भगीरथ के बताए हुए रास्ते पर। राजा भगीरथ के प्रयत्न से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, और राजा भगीरथ क्यों गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते थे? उनके 60,000 जो पितर थे, है ना, भगीरथ महाराज सगर के पुत्र हुए असमंजस, और असमंजस के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप नहीं, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, है ना। तो 3-4 पीढ़ी ऊपर जो सगर के 60,000 पुत्र थे, एक पत्नी से 60,000 पुत्र पैदा हुए थे महाराज सगर के, और दूसरी पत्नी से असमंजस का जन्म हुआ था। असमंजस की फिर पुत्र परंपरा में भगीरथ हुए। तो 60,000 जो सगर के पुत्र थे वो विवाहित ही नहीं हुए, या पुत्र ही नहीं हुए उनके, जो भी हो उनकी, उनका कोई वंश नहीं चला। तो वो जो है कपिल भगवान के अपराध से भस्म हो गए थे, है? और कहाँ पर भस्म हो गए थे? जहाँ पर गंगा सागर संगम है। तो गंगा तो बाद में आई, उस समय गंगा जी नहीं थी, है ना, और समुद्र भी नहीं था। समुद्र उन्होंने नहीं मतलब इतना खोद के बढ़ाया, समझे? तो क्योंकि समुद्र तो बहुत दूर था, जम्बूद्वीप जो है बहुत बड़ा था, ये लंका और भारत के बीच में समुद्र नहीं था, और ये जितने सिंगल द्वीप, लंका द्वीप, ये सब जितने द्वीप बने हैं, ये सब जो है मतलब उनके खोदने से बने हैं, सगर पुत्रों के खोदने से बने हैं, नहीं तो इनके बीच में समुद्र नहीं था, पूरी जमीन थी, एक जमीन थी जम्बूद्वीप की। तो आप सोचिए उन्होंने कितना खोदा समुद्र। तो घोड़े को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को वो खोजते खोजते वो जमीन खोदते रहे, फिर सभी दिशाओं में पता लगा लिया, घोड़ा नहीं मिला तो जमीन को खोदते वहाँ पर पहुँचे, और कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ मिला। इंद्र ने जो है घोड़े को बांध दिया था कपिल मुनि के आश्रम में, और कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, है ना। तो हमें से शिक्षा मिलती है कि किसी के ऊपर गलत आरोप तुरंत ना लगाएं। तो उन्होंने देखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा है, कपिल मुनि ध्यान में लगे हुए हैं, तो तुरंत ये दुष्ट है, ये ध्यान का ढोंग कर रहा है, ये चोर है, इसने घोड़ा चुराया है, इसको मारो, इस तरह से कपिल मुनि के ऊपर आरोप लगाए और प्रहार करने के लिए तैयार हुए। हंति निंदति वैद्वेष्टि, वैष्णव के 6 प्रकार के अपराध, सब अपराध किए। एक अपराध से ही व्यक्ति का निश्चित पतन होता है, और वैष्णव के महाभागवत कपिल भगवान 12 महाजनों में से हैं। है ना। तो छह के छह अपराध किए, हंति मतलब प्रहार करना, निंदति निंदा करना, द्वेष्टि द्वेष करना, वैष्णवान ना विनंदति वैष्णव का सम्मान ना करना, क्रोधते क्रोध करना और हर्ष प्रकट ना करना, छह प्रकार के अपराध, छह के छह अपराध उन्होंने किए महाभागवत के। और उस अपराध से क्या हुआ, उनकी आयु घट गई, कितनी घट गई, एक सेकंड में समाप्त, उनकी आयु एक सेकंड की रह गई और वहीं जल करके ढेरी 60,000 भस्म के ढेर बन गई, है ना। तो भगीरथ जो है, राजा भगीरथ अपने इन पितरों को नरक से निकालना चाहते थे, और गंगा जी में ऐसी शक्ति है कि किसी के शरीर की भस्म या हड्डी भी गंगा जी के जल में अगर पड़ जाए तो उसका जो है नरक से उद्धार हो जाता है, ठीक है ना, और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इतनी शक्ति गंगा जी में है। तो भगीरथ जो है वहाँ ला रहे थे गंगा जी को, है ना। और कहाँ से शुरू किया था, शिव जी जहाँ कैलाश पर्वत में है, तो गंगा जी सबसे पहले स्वर्ग से गिरी तो सुमेरु पर्वत पर गिरी, और सुमेरु पर्वत पर उनकी चार धाराएं हो गई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा। अलकनंदा की जो धारा है वो दक्षिण दिशा में, सुमेरु के दक्षिण दिशा में कैलाश पर्वत में आई, और वो धारा जो है शिव जी के जटाओं में गिर करके उसका जो है वेग कम हो गया, ताकि सीधे पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी को ही छेद कर देगी, अगर बहुत तेजी से पानी गिरता है तो गड्ढा हो जाता है जमीन में। तो वो जो है उस धारा का वेग कम करने के लिए शिव जी जटाओं में आती है, और फिर भगीरथ जो है उसको लेके आते हैं अपने रथ से जो है रास्ता दिखाते हुए। तो भगीरथ का रथ जो है आगे आगे चल रहा है, गंगा जी पीछे पीछे चल रहे हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से भगीरथ ले जा रहे हैं। और भगीरथ जब वहाँ से आए और यहाँ पर आए, कहाँ पर, जाह्नवीद्वीप, नवद्वीप, नवद्वीप धाम। तो वहाँ वहाँ से जब गुजरे तो गंगा जी जो है चलती रहीं और उनके आश्रम को बहा दिया, जाह्नव मुनि के आश्रम को बहा दिया। तब जाह्नव मुनि की तपस्या भंग हुई, उन्होंने देखा कि ये क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उन्होंने फिर जो है गंगा जी को पी लिया। और भगीरथ, राजा भगीरथ ने जब देखा कि गंगा जी पीछे पीछे नहीं आ रही, अरे क्या चक्कर है, कितना परिश्रम किया गंगा जी को लाने के लिए, हैं, पहले तो गंगा जी को प्रसन्न किया, और गंगा जी प्रसन्न हुई तो बोले कि मैं अगर पृथ्वी में गिरूंगी तो पृथ्वी में बह नहीं सकती हूँ, मेरे वेग से पृथ्वी में छिद हो जाएगा और मैं पाताल में चली जाऊँगी। तो शिव जी को प्रसन्न कर, फिर शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी प्रसन्न हुए, और अब गंगा जी किसी प्रकार से आ रही हैं तो अभी एक और बात आ गई, महाराज ने क्या किया, पी लिया। तब भगीरथ ने जो है महाराज को प्रसन्न किया कि प्रसन्न हुई, तब उन्होंने गंगा जी को निकाला और गंगा जी उनकी पुत्री कहलाई, जैसे जाह्नवी, गंगा जी को जाह्नवी जो नाम दिया गया है वो जाह्नु मुनि की पुत्री के रूप में। तो पहले भगवान के जो है चरणों से उत्पन्न हुई थी गंगा जी, लेकिन इस पृथ्वी में उन्होंने जन्म लिया, सबसे पहला जन्म लिया पृथ्वी में आकर के, तो वो उस स्थान में। तो जाह्नव सप्तमी की जो तिथि है ये बड़ी पवित्र तिथि है, इस दिन गंगा जी ने जन्म लिया, है ना, जाह्नव मुनि की पुत्री के रूप में जन्म लिया, है ना। कि वैशाख शुक्ला सप्तमी है जाह्नव सप्तमी। तो हम विचार कर रहे थे कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में तीन तिथियाँ आती हैं जो गंगा जी से संबंधित हैं। सबसे पहली तिथि आती है गंगा पूजा की, गंगा पूजा भी आगे चल करके आएगी, लेकिन सबसे पहली घटना वो है जब गंगा जी जो है सुमेरु पर्वत पर गिरी, तो स्वर्ग से पृथ्वी के सबसे ऊंचे हिस्से में गंगा जी आती हैं और वो है सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के शिखर में गिरती हैं गंगा जी। तो वो गंगा पूजा का वो दिन है जब गंगा जी पृथ्वी में जो है उतरती हैं। तो आगे चल करके आएगा और वो है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, करीब एक महीने बाद, एक महीना तीन दिन के बाद आएगा, है ना, 10 जून को, 8 जून को, हाँ 8 जून को, क्षमा करना, अर्जुन को आएगा, वो जो है गंगा दशमी भी उसे कहते हैं, गंगा पूजा कहते हैं। तो वो पहली घटना है गंगा जी से संबंधित गंगा पूजा। फिर दूसरी घटना ये है जनु सप्तमी की, कि वहाँ से चल करके आई है ना। तो ऐसा कैसे है कि वो आगे चल करके आएगा, अभी एक महीने बाद आएगा, इसका क्या उत्तर है? और ये घटना बाद में आती है तो बाद में आना चाहिए, तो पहले क्यों आ गई जनु सप्तमी जी? हाँ क्योंकि गंगा पूजा के बाद जो है फिर अगले साल जो आती, तो गंगा जी को चलने में इतना समय लगता है, ठीक है ना। तो जनु सप्तमी की जो घटना है वो बाद में हुई है, अगले वर्ष हुई है ना। तो इस दिन गंगा जी वहाँ पहुँच गई, नवद्वीप में पहुँच गई। कहाँ से? सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत से नवद्वीप में पहुँचने में इतना समय लगा उनका है? और फिर तीसरी घटना और गंगा जी की आती है हमारे वैष्णव कैलेंडर में, क्या है? गंगा सागर मेला लिखा है वैष्णव कैलेंडर में। गंगा सागर मेला वो कब आता है? मकर संक्रांति के दिन। अब 14 जनवरी को पड़े या कभी 15 जनवरी को पड़े, जब भी मकर संक्रांति, वो दिन जो है गंगा जी का समुद्र में मिलन होता है उस दिन। तो आप समझ सकते हैं कि जनु सप्तमी के बाद जब मकर संक्रांति आती है तो वो समय है, इतना समय लगता है गंगा जी को समुद्र में, समुद्र से मिलने में, ठीक है ना। तो ये तीन घटना है ना। तो वो जो समय है जब गंगा जी समुद्र से मिलती हैं वो मकर संक्रांति का दिन माना जाता है। वो चंद्रमा की तिथि के अनुसार नहीं बल्कि सूर्य के अनुसार जो है वो तिथि मानी जाती है, मकर संक्रांति की तिथि। जिस दिन मकर संक्रांति होती है उसी दिन गंगा सागर मेला हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है ना। इस प्रकार की तीन तिथियां हैं। तो मैं श्रीमद् भागवत के नवे स्कंद में देख रहा था कि जनु जो मुनि है ये मतलब किस वंश में जन्मे हैं। वास्तव में ये राजा हैं, ये राजा हैं, चंद्रवंशी राजा हैं, है ना। तो चंद्रमा का वंश हो या कोई भी वंश हो, सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? भगवान है, भगवान ही है। सब प्रत्येक वंश के आदि पुरुष भगवान है। तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म होता है ना। ब्रह्मा जी भी दूसरे पुरुष, चाहे कोई भी वंश हो, ब्रह्मा जी दूसरे पुरुष हैं। पर ब्रह्मा जी से कई पुत्र हुए, तो उनमें से अत्रि मुनि एक हुए। अत्रि मुनि के तीन पुत्र हुए, दत्तात्रेय और चंद्रमा और दुर्वासा। जिनमें से जो चंद्रमा हुए तो ये चौथे पुरुष हैं इस वंश के। फिर चंद्रमा से बुध का जन्म हुआ, ये पांचवें व्यक्ति हैं इस वंश के। तो चंद्रमा इस वंश में चौथे हैं और इनके नाम से चंद्रवंश कहलाता है, ठीक है ना। पहले विष्णु, दूसरे ब्रह्मा, तीसरे अत्रि, चौथे चंद्रमा, पांचवें बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा छठवें, है ना। पुरुरवा के पुत्र हुए विजय, हालांकि उनके छह पुत्र हुए आयु श्रुतायु। तो आयु के वंश में ये जो है मतलब भगवान कृष्ण हुए चंद्रवंश। तो जो है वंश जो है बड़े पुत्र से ही मतलब माना जाता है, लेकिन विजय नाम के जो पुत्र हुए तो वो इसलिए फिर चंद्रवंश की एक शाखा अलग मानी जाती है। ये जो जनु हुए हैं ये चंद्रवंश की शाखा में हुए, चंद्रवंश की मुख्य शाखा नहीं है। विजय है ना, विजय के पुत्र हुए भीम, ये भीम दूसरे हैं, ये पांडु पुत्र भीम नहीं है। फिर भीम के पुत्र हुए कांचन, कांचन के पुत्र हुए धोत्रक, और उनके बाद हुए ग्यारहवें जनु, है ना। तो भगवान विष्णु से प्रारंभ करके ग्यारहवें व्यक्ति हैं जनु, बारहवें हैं पुरु, तेरहवें हैं बलाक, चौदहवें अजक, और पंद्रहवें कुश, सोलहवें कोसाम्बु, सत्रहवें गाधी, अठारहवें विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है इस वंश में पैदा हुए हैं, है ना, जिसको कि कुश वंश कहलाते हैं, कुशिक वंश के विश्वामित्र। तो इनके विषय में कहा गया है, भीमस्तु विजयस्यात है कांचनो होत्रकस्ततः तस्य जहनो सुतो गंगाम गंडूसी कृत्य यो पिबत। कि जहनु ने जो है गंगा को जो है अपनी अंजलि में भर करके पी लिया, एक घूंट में पी लिया जहनु मुनि ने। तो ये जो घटना है वो बहुत ही पवित्र है, इसको हमें स्मरण करना चाहिए। अब ये जो गंगा देवी हैं इनका और भी चरित्र मिलता है, अनेक अनेक स्थानों में गंगा जी का चरित्र मिलता है। तो आज मैं गंगा जी का चरित्र सुनाऊंगा महाभारत से, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि गंगा जी पृथ्वी में तो बहती हैं, लेकिन वैसे गंगा जी अपने मूल रूप में पृथ्वी में भी कभी होती हैं, कभी स्वर्ग में होती हैं, कभी ब्रह्मा जी के लोक में होती हैं। तो वे जो है विचरण करती रहती हैं, अपने दिव्य रूप में विचरण करती रहती हैं। स्त्री स्त्री हैं ये गंगा जी। तो ये श्रीमद ये महाभारत के आदि पर्व का 96वां अध्याय है। इसमें जन्मेजय जो कथा सुन रहे हैं वे संपाइन सुना रहे हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए, है ना। यही अगले जन्म में शांतनु बने, शांतनु चंद्रवंशी, चंद्रवंश में इन्होंने जन्म लिया। लेकिन सूर्य वंश में पहले महाभीष नाम के राजा थे, और उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मलोक में गए, और फिर ब्रह्मलोक से फिर जब उनको पृथ्वी में आना पड़ा तो चंद्रवंश में ये जो है शांतनु नाम के राजा हुए, है ना। तो महाभीष नाम के राजा हुए, सत्यवादी थे, सत्य पराक्रमी थे। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 राजसूय यज्ञ किए, और इस प्रकार से जो है ये ऊपर के लोकों में गए। फिर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे थे। वहाँ बहुत से राजर्षि और ये राजा महाभीष भी ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। इसी समय गंगा जी ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उनके शरीर का चांदनी के समान उज्ज्वल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वस्त्र उठ जाता है ना, तो गंगा जी का वस्त्र उठ गया। ये देखकर सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, है ना। किस भावना से? कि माता, माता की भावना से अपना सिर नीचे की ओर कर लिया, है ना। ततो भवन सुरगणा सहसा वांगुखास्तदां महाभिषस्तु राजर्षिर असंको दृष्टिवान नदीं। ये राजर्षि महाभिष बिना किसी भय के गंगा जी की ओर देख रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, ये बंधन होता है इस भौतिक जगत में। अगर कोई व्यक्ति किसी देवी को भोगना चाहता है तो उसको जो है कष्ट से बंधना पड़ता है। ये शिक्षा जो है हमें प्राप्त होती है। तो आगे चल कर देखें क्या होता है। तब ब्रह्मा जी ने महाभिष को श्राप देते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने महाभिष को श्राप दिया, या कि ब्रह्मा जी ने भी अपना सिर नीचा कर लिया था गंगा जी को देख करके। महाभिष को श्राप दिया कि तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्यलोक में आओगे, अभी तुमको मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। अगर ऐसी इच्छाएं हैं तुम्हारी, भोगों की इच्छाएं हैं, तो मनुष्य लोक में तुम्हें जाना होगा, फिर से दोबारा पुण्यलोक में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है वो मनुष्य लोक में तुम्हें कष्ट प्रदान करेगी। तो वही स्त्री कष्ट का कारण बनती है। अगर कोई व्यक्ति स्त्री को अपनी भोग की वस्तु समझता है तो स्त्री कष्ट का कारण बनती है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये नियम सर्वत्र है। लेकिन इसलिए वैष्णव क्या मानता है, अपनी पत्नी को क्या मानता है, कि भगवान की दासी है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है ना। ये भोगने के लिए नहीं है, पत्नी जो है भोगने के लिए नहीं है। अगर भोगने के लिए है तो वही पत्नी फिर कष्ट का कारण बनती है। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तुम गंगा जी को भोगना चाहते हो तो गंगा जी तुम्हारी पत्नी बनेंगी, लेकिन तुम्हारे कष्ट का कारण भी बनेंगी गंगा जी, है ना। यजाहृत मनसास मनास चासी गंगया तुम यदुर्मते साते वै मानुषी लोके प्रियाणी आचरिष्यति। और जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आएगा तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। जब क्रोध आएगा मतलब तुम जब गंगा को त्याग दोगे कि अब मुझे नहीं भोगना ना, ये तो जो है कष्ट का कारण है। जब कोई व्यक्ति स्त्री को सोचता है भी भोगने से ही जो है मतलब कष्ट प्राप्त होता है और भोगने की इच्छा त्याग देता है तो वो कष्ट से छूट जाता है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आएगा तो तुम साप से छूट जाओगे, है ना। यदा ते भविता मन्योस तदा सापान मोक्षसि। तब राजा महाभिष्णु ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके चुना, क्योंकि उच्च लोगों के लोग जो है अगर मनुष्य लोक में आते हैं तो वो जो है चुनाव करते हैं कि उनको कहाँ जन्म लेना है। तो राजा महाभिष्णु इतने पुण्यात्मा थे, इतने पवित्र थे कि वे जो है अपनी इच्छा से चुन सकते थे कि मुझे किस वंश में जन्म लेना चाहिए और किसके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहिए। तो उन्होंने चुना, क्या चुना, तपस्वी राजाओं का चिंतन किया, फिर महातेजस्वी राजा प्रतीप को अपना पिता चुना कि मैं जो है राजा प्रतीप का पुत्र बनूंगा, चंद्रवंश में जो राजा प्रतीप होंगे उनका मैं पुत्र बनूंगा। और गंगा जी राजा महाभिष को धैर्य खोते देख मन ही मन उनका चिंतन करती हुई लौटी, है ना। अब जाती हैं गंगा जी तो रास्ते में वसुओं को देखा, गंगा जी ने वसुओं को देखा, वसु कितने हैं, 8 वसु हैं, है? ये देवताओं की सृष्टि है, 8 वसु हैं। वसुओं को देखा तो वे भी जो है स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं, वसुओं को भी सांप मिल गया है तो भी स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं। गंगा जी को सांप नहीं मिला, गंगा जी तो पहले से पृथ्वी में है ही हैं, पृथ्वी में बहती हैं, है ना। लेकिन राजा महाभिष को सांप मिला तो वो जन्म उन्होंने निश्चित कर लिया कि मुझे जन्म लेना है मनुष्य लोक में, तो कहाँ लेना है, राज परिवार में जन्म लेना है। और प्रतीप नाम के राजा बहुत ही श्रेष्ठ और संयमी तेजस्वी शक्तिशाली हैं, उनका मैं पुत्र बनूंगा। और वसुओं को साथ मिला है वशिष्ठ मुनि का कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो, तो बहुत मलिन बड़े उदास दिखाई दिए वसु, किसने देखा वसुओं को, गंगा जी ने देखा है। तो गंगा जी ने पूछा कि तुम लोगों का ये दिव्य रूप कैसे नष्ट हो गया, सब कुशल मंगल है। तो वसुओं ने गंगा जी से कहा कि हे देवी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर हमें श्राप दे दिया है। पहले की बात है, एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्या उपासना कर रहे थे, हम लोग उनका उल्लंघन करके चले गए, इससे कुपित होकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया, तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कह दी है वो टाली नहीं जा सकती, अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करो। तो तुम मनुष्य की पत्नी बनोगी तो हमको जो है पुत्र रूप में उत्पन्न करो, फिर क्या करो, हमें किसी मानुषी स्त्री के उतर में प्रवेश ना करना पड़े, इसलिए हमने अनुरोध किया है। मनुष्य की स्त्री में अगर जाएंगे तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, है ना। गंगा जी का शरीर थोड़ी ऐसा है, गंगा जी का शरीर जो है मल मूत्र अशुद्ध चीज़ों से थोड़ी बना हुआ है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी मनुष्य स्त्री के उदर में जाएं, वो तो मल मूत्र का जो है स्थान है, तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, हम आपके दिव्य शरीर में आना चाहते हैं। और फिर क्या करें आप, गंगा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है मैं तुमको अपने उदर से जन्म दूंगी। गंगा जी ने कहा कि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों के पिता होंगे, तुम लोग किसको पिता बनाना चाहते हो। गंगा जी ने पूछा, क्या पूछा, कि मुझको तो तुम माता बनाना चाहते हो, ये पिता किसको बनाना चाहते हो। तो वसु ने कहा कि प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे, वे हमारे पिता बनेंगे। तो वो पहले से निश्चित हो चुका है, और देखो वही बात यहाँ भी वसु ही कह रहे हैं, है ना। तो ऐसी मतलब भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है कि वो घटनाएं मतलब किस तरह से मिलान हो रहा है, है? कि ब्रह्मा जी ने निश्चित कर दिया पहले से कि गंगा जी इनकी पत्नी बनेंगी, तो वे उन्हीं को कह रहे हैं कि ये हमारे पिता बनेंगे, महाराज शांतनु हमारे पिता बनेंगे। महाभिष सूर्यवंश के राजा और चंद्रवंश के राजा वही कौन है, शांतनु है। तो गंगा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा विचार है, मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी है? और तुम्हारे काम को सिद्ध करूंगी, तुम्हारा काम भी मैं करूंगी है? तब वसु देवता बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें तब तुम पैदा होते ही अपने जल में फेंक देना, जैसे शीघ्र ही हम फिर वापस आ जाए, कहाँ वसु लोक में आ जाए है? तो ये करना आप हमको है ना। गंगा जी का ठीक है, ऐसे ही करूंगी, परंतु राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया गया संबंध व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए एक पुत्र राजा को मिलना चाहिए है ना। तो वसु देवता कहते हैं कि हाँ वशिष्ठ मुनि, तो एक को तो साफ दिया है कि वो मर्त लोक में रहेगा ही, तो वो एक रहेगा, वो भी जो है पहले से व्यवस्था हो गई। वशिष्ठ मुनि ने एक को तो कहा है कि वो मर्द लोग में रहेगा, जिसने गाय चुराई थी है ना, क्यों नाम का वसु, तो वो तो रहेगा ही है। तो जो द्यो नाम का वसु था, तो उसने अपने पत्नी के कहने से वशिष्ठ की गाय चुराई थी। द्यो नाम का जो आठों वसु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए थे है? आश्रम की शोभा देखने के लिए, और वशिष्ठ मुनि तपस्या में लगे थे या आश्रम में नहीं थे, तो सात वसु तो मतलब निरअपराध थे, निर्दोष थे, कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन जो आठवां वसु था, द्यो नाम का वसु, उसकी पत्नी ने दिखाया कि देखो प्राणनाथ, ये वशिष्ठ मुनि की गाय ये जो है इतनी गुणकारी है, इसका दूध जो पी ले उसको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो पत्नी कहती चुरा लो चुरा लो, तो चुरा लिया, द्यो नाम के वसु में चुरा लिया। जब वशिष्ठ मुनि आश्रम में आए, गाय नहीं देखी, तो उन्होंने अपने योग दृष्टि से जब देखा तो आठ वसु आए थे, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा अपनी दृष्टि का इस्तेमाल नहीं किया कि उसमें भी विशेष व्यक्ति कौन अपराधी है, तो आठों को साथ दे दिया वशिष्ठ मुनि कि आठों के आठों मनुष्य लोग में जाए। जब उनको पता चला तो वशिष्ठ मुनि के पास आए कि सात लोग तो निर्दोष हैं, आपने साथ दे दिया, तो बोले साथ तो दे दिया, आप बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ, उसको कम कर सकता हूँ श्राप को, कि तुम लोग जैसे जाओगे मनुष्य लोक में तुरंत वापस आ जाओगे, लेकिन जिसने सचमुच दोष किया है उसको तो रहना पड़ेगा, और चूंकि पत्नी के कहने से किया है तो उसको अब पत्नी नहीं प्राप्त होगी, उसको पत्नी नहीं प्राप्त होगी है ना, तो वो भीष्म थे है ना। तो इस तरह से जो है अब राजा प्रतीप पृथ्वी में शासन कर रहे हैं, राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं, पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य कर रहे हैं। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे, कई सालों तक एक आसन पर बैठे हुए जप कर रहे हैं प्रतीप। कहाँ पर? हरिद्वार में, हरिद्वार में वहाँ गंगा जी हैं ना। उसी समय गंगा सुंदर रूप से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और राजर्षि प्रतीप के दाहिने जांघ में बैठ गए। उस समय आकृति बहुत सुंदर थी, देवांगना के समान अत्यंत मनोहर मुख था। अपनी जांघ पर बैठी हुई उस नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? खांसी आ रही थी। हाँ क्या सुना? राजा प्रतीप कितने आत्मसंयमी थे ये देखिए, कितने आत्मसंयमी थे, कितना उनका जो है अपने इंद्रियों पर जो है अधिकार था ये देखिए है ना। इसमें बड़ी मतलब अद्भुत विचित्र ये कथाएं हैं, और गंगा जी भी जो है राजा की परीक्षा ले रहे हैं, वास्तव में राजा प्रतीप की परीक्षा ले रहे हैं कि वे कितने आत्मसंयमी है। स्त्री बोली, राजन मैं आपको चाहती हूं, आप मुझे स्वीकार करें, अपने पास आई स्त्री का परित्याग निंदा की बात है, मैं आपके पास आई हूं। प्रतीप ने कहा, देवी मैं काम बस पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता, मेरा ये व्रत है। स्त्री बोली कि मुझ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझमें कोई कलंक नहीं है, मैं दिव्य कन्या हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। प्रतीप ने कहा, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो उसका निराकरण तुमने ही कर दिया। अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो तुमने ही गलती की है। क्या गलती की है? कि तुम मेरी दाहिनी जांघ में बैठी हो। अगर पत्नी बनना था तो बाईं जंघा में बैठती। ये दाहिनी जंघा पुत्र पुत्री या पुत्र वधु का आसन है। राजा प्रतीप कहते हैं पुरुष की बाईं जंघा ही पत्नी की योग्य है, तो अब तुमने वैसे ही जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, मतलब वो वैसे ही हो गया कि तुम जो है मेरी दाहिनी जंघा में बैठी हो, इसलिए अब तुम मेरी पुत्र वधु हो। पुत्र वधु ही बनना था गंगा जी को, लेकिन गंगा जी परीक्षा ले रही थी राजा। राजा के अंदर कितना धैर्य है, कितना धर्म है, कितना शास्त्रों का विचार है, ये भी तो एक बात है समझने की है। तो पुत्र वधु, अब तुम मेरी पुत्र वधु बनोगी। तो फिर गंगा जी बोली कि आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं जो है इस वंश की माता बनूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सब में आप उत्तम, सबसे उत्तम है। 100 वर्षों में भी आपके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकती, इतना गुण है। मैं एक शर्त पर आपके पुत्र से विवाह करूंगी, गंगा जी कह रहे हैं। अच्छा, आप अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, आप समझ रहे, अभी विवाह की बात चल रही है, जिससे विवाह की बात चल रही है उसका अभी जन्म नहीं हुआ है। गंगा जी कहती हैं, मैं एक शर्त पर आपके पुत्र से विवाह करूंगी, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वो आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए, और वो कुछ भी विचार न करें उस विषय में कि मैं क्यों कर रही हूं, क्या कर रही हूं। इस शर्त पर मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी, और जो भी प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा फिर आपके पुत्र को स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाएगी। जिन पुत्रों को मैं जन्म दूंगी तो उनके जन्म देने से ही जो है आपके पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बता दें। तब राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर शर्त स्वीकार कर ली और देवी गंगा अंतर्धान हो गई, अंतर्धान हो गई। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने ये बात याद रखी। इन्हीं दिनों प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। तब तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और सूर्य के समान प्रकाशमान था, और वही राजा महाभेष पुत्र रूप में जन्मे, इनका नाम था शांतनु। शांत पिता की संतान होने से शांतनु कहलाए। पिता शांत हो रहे थे, मतलब वृद्धावस्था आ गई। जब पिता की वृद्धावस्था आ गई तब पुत्र ने जन्म लिया, है ना। ये राजर्षि ऐसे होते थे कि जब राज्यकाल उनका समाप्त हो जाता है और जवानी समाप्त हो जाती है तब वो पुत्र उत्पन्न करते हैं, है ना। पत्नी के साथ रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना। तो शांतनु कहलाए। इसके बाद फिर जो है इनका नामकरण संस्कार हुआ और बहुत श्रेष्ठ राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुँचे, ये सब वर्णन आ रहा है। इसके बाद राजा प्रतीप ने अब आदेश दिया अपने पुत्र शांतनु को कि पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य स्त्री आई थी, उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए हुआ था। यदि वो सुंदरी तुम्हें एकांत में तुम्हारे पास आए तो और पुत्र पाने की इच्छा रखती है तो उससे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, ये प्रश्न नहीं करना। शांतनु क्या नहीं, प्रतीप क्या कह रहे हैं शांतनु से कि एक दिव्य स्त्री आएगी और वो तुम्हें पति बनाना चाहती है तो तुम उसको स्वीकार कर लेना और कुछ नहीं पूछना। क्या नहीं पूछना? ये तुम्हारा क्या नाम है, किसकी पुत्री हो, है ना। हर व्यक्ति की इच्छा होती जानने की है, और विशेष से अगर विवाह हो तो सब इतिहास वंश परंपरा सब जो है मतलब बताए जाते हैं। लेकिन प्रतीप कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं जानने की कोशिश करना, तुम उसका नाम भी नहीं पूछना, किसकी पुत्री है, किस वंश में पैदा हुई, कुछ नहीं पूछना। और वो जो कार्य करे तुम्हें पूछताछ नहीं करना है उसके, जो भी काम करे कुछ पूछताछ नहीं करना और मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी बना लेना। तब फिर समय आने पर राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और प्रतीप राजा वन में चले गए। अब ये सामने घड़ी नहीं है, क्या बात है? तो इसलिए घड़ी सामने सटा दी कि चाहे जितना समय चाहे क्लास दें। यहाँ तो देखा 9 बजे समाप्त कर दें, ये 9 कब बजे ये पता ही ना चले, इसलिए घड़ी हटा दी है। अच्छा हाँ, तो क्या सुना, क्या सुना? हाँ, राजा बन गए शांतनु और अब वो वन में विचरण कर रहे हैं। गंगा जी के तट पर अकेले विचरण कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने परम सुंदरी स्त्री देखी, तेज से प्रकाशित हो रही है, साक्षात लक्ष्मी जैसी, दिव्य आभूषण धारण किए, एकांत में देखा और आश्चर्यचकित हो गए, सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुए। राजा शांतनु स्नेह बस सौहार्द उदय हुआ और शांतनु ने मधुर वाणी में कहा, तुम देवी हो या दानवी हो, गंधर्वी हो, अप्सरा हो, यक्षी हो, नागकन्या हो या मानवी हो, कौन हो? मैं तुमसे याचना करता हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। तब शांतनु का मनोहर भजन सुनकर गंगा उनके पास आई और गंगा को वो वचन स्मरण हुआ कि उन्होंने वसुओं को वचन दिया था, और राजा प्रतीप की बात याद आ गई। तो फिर उन्होंने मतलब क्या कहा कि हे राजन, मैं आपकी महारानी बनूंगी, आपके अधीन रहूंगी, लेकिन एक शर्त है, मैं भला बुरा जो कुछ भी करूं उसके लिए आप मुझे रोकना नहीं और मुझे अप्रिय वचन नहीं बोलना। निश्चय कर लिया था पहले से कि क्या करना है, निश्चय कर लिया था पहले कि क्या करना है, पुत्र जैसे पैदा होंगे गंगा जल में फेंक दूंगी, लेकिन आप मुझे टोकना नहीं, अप्रिय बात नहीं बोलना, मैं जो कुछ भी करूं पूछताछ भी नहीं करना, पूछताछ नहीं करना, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी, यदि आपने मुझे किसी कार्य से रोका या प्रिय वचन कहा तो आपका साथ छोड़ दूंगी। बहुत अच्छा कहकर राजा ने शर्त मान ली और इस तरह से जो है इनका विवाह हुआ गंगा जी के साथ। पिता का भी आदेश था। इस तरह से बहुत मतलब समय तक गंगा जी साथ में रही इनके और फिर कई वर्ष और महीने बीत गए। फिर देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न हुए गंगा जी से और जो जो पुत्र उत्पन्न होता उसे गंगा जी जल में फेंक देती कह करके कि मैं तुझे प्रसन्न कर रही हूं, प्रणाम में हम त्वाम इत्युक्त्वा गंगा सुतस्य अजया हसन जी। तो गंगा जी में फेंक देती थी अपने पुत्र को, ये कह करके पैदा करती थी कि मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कर रही हूँ और डुबो देती जल में, गंगा जी जल में डुबो देती। किसी की हिम्मत नहीं पूछने की ये क्या कर रही है महारानी, ये क्या कर रही है, कितना मतलब उद्वेग और तनाव पैदा हुआ पूरी प्रजा में, हस्तिनापुर की प्रजा और फिर राजमहल, सबको तनाव पैदा और सबको डर कि कुछ कह नहीं सकते, कुछ पूछ भी नहीं सकते, है ना। 7 पुत्र इस तरह से उन्होंने डाल दिए गंगा जी में। पत्नी का ये व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था तो भी कुछ नहीं कहते थे, राजा को भय था कि मुझे छोड़ करके चली जाएगी, है ना। जब 8वां पुत्र हुआ तब हंसती हुई अपनी स्त्री से राजा ने दुखी होकर के कहा, अब क्या सोचा, अब जाए तो जाए अब मैं जो है ये काम नहीं करने दूंगा इसको। तो पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखी होकर कहा, अरे इस बालक का वध ना कर, तू किसकी कन्या है, तू कौन है, अपने पुत्र को क्यों मारती है, पुत्र घातनी, पुत्र हत्या का निंदनीय कार्य करके तू भारी पाप कर रही है। मावधि कर्ष्य काशी थी कि मेहनत से सुतानी थी, पुत्र अग्निशु महत् पापम संप्राप्तम तेसु गर्हितम। स्त्री बोली, पुत्र की रक्षा करने वाले राजन, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु अब मेरे रहने का समय समाप्त हो गया है। जैसे पहले शर्त हो चुकी है, मैं जहनू की पुत्री महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूं, अब परिचय दिया कौन हूं, कितनी दिव्य है, जानू की पुत्री हूं मैं। महर्षि लोग जिसका सेवन करते हैं, महर्षि लोग भी अपने पापों से मुक्त होते, महर्षियों को भी पवित्र करती हूं मैं। है? देवताओं का कार्य करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रही हूं। ये तुम्हारे 8 पुत्र वसु देवता हैं, वशिष्ठ जी के साप से ये मनुष्य होने में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो वसुओं का पिता बन सके। इसी प्रकार इस जगह में मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं थी जो इनको गर्भ धारण करे। इन वसुओं की माता होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई। तुमने 8 वसुओं को जन्म लिए दिया, इसलिए तुम्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी, आप पिता बने। वसु देवताओं की शर्त थी, मैंने उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्यों से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा वशिष्ठ के साप से मुक्त हो गए हैं, आपका कल्याण हो। अब मैं जाती हूँ और आप इस पुत्र का पालन कीजिए। ये आपका पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है, इसमें संदेह नहीं। ये बालक बल और पराक्रम में सभी से बढ़कर होगा। ये बालक वसुओं में से श्रेष्ठ है। मैंने आपके लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी, राजा का एक पुत्र जीवित रहे, इसे मेरा बालक समझना, इसका नाम गंगा दत्त रखना, गंगा दत्त। एष पर्याय वासो मे वसूनां सन्निधौ कृतां, मत्प्रसूतिं विजानीहि गंगा दत्तम् इमं सुतम्। तो इस तरह से ये जो है कथा कुछ हमने सुनाई गंगा जी के विषय में। गंगा जी का महात्म तो बहुत भरा है, सभी शास्त्रों में गंगा जी का महात्म भरा है। जैसे भगवान का महात्म अंत नहीं है, ऐसे गंगा जी की भी महात्म का अंत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा। हाँ जी बोलिए। वो नहीं है हैंड माइक।
वहां पे एक वर्णन आता है कि गंगा जी गौर पूर्णिमा के समय नवदीप में पहुंचे थे। ये जो जन्म सप्तमी है तो 2-3 महीने बाद में आ रही है, वहां पे उन्होंने फास्ट किया, गौर पूर्णिमा के लिए रुकी है सब।
लेकिन ये तो निश्चित है कि आज के दिन गंगा जी वहां गुजरी। अब गौर पूर्णिमा के दिन वहां पहुंची ये किस हिसाब से बताया गया मैं नहीं जानता, लेकिन आज का दिन तो यह है ही है कि गंगा जी वहां पहुंची, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ।
हरे कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे आप बताए थे जो पुण्यात्माओं में या उच्च लोकों में जो जीव होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार आते हैं गर्भ में, तो जैसे स्वर्ग आदि लोग हैं लोग जो पृथ्वी लोक पर गिरते हैं तो क्या सारे जीव अपनी इच्छा अनुसार ही?
नहीं, यहाँ अच्छा प्रश्न है का। जब भगवान कहते हैं छीड़े पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, छीणे पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति, कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तो मर्ते लोक में आते हैं तो उनकी तो बड़ी दुर्गति होती है, क्योंकि पुण्य छीन करती है उन्होंने वहां, तो उनका फिर बस नहीं होता है। वहां से जो है उनकी माला मुरझाती जाती है, जैसे पुण्य छीन होते जाते हैं तो माला मुरझाती जाती है उनकी, और जब सब पुण्य छीन हो गए तो वो जो है बिल्कुल उनके बाल बिखरे हुए और सिर नीचे और पैर ऊपर और वो गिरते हैं। तो ये तो बहुत दुर्गति है और ये बड़े कष्ट की स्थिति है ये, जब कोई व्यक्ति स्वर्ग से गिरता है ये पुण्य क्षीण होने पर। किसी के पुण्य क्षीण ना हो, किसी कारण से अगर वो आए तो वो फिर अपना चुनाव कर सकता है। तो राजा महाभिष जो है बहुत पुण्यात्मा थे, उन्होंने इस तरह से अपने पुण्य क्षीण नहीं किए, ठीक है ना। और फिर गंगा जी को भी प्राप्त करने की जो इच्छा है वो अपने आप में एक पवित्र है, वो भी अपने आप में एक पवित्र है ना। हाँ, कुछ दोष भी है इसमें, लेकिन इसमें जो है बहुत गुण भी है ना। और वैसे बताया गया कि ये राजा शांतनु समुद्र के अवतार है, तो गंगा जी समुद्र की पत्नी है ही है पहले से, तो समुद्र के अवतार है ये, तो पहले से ही गंगा जी के साथ इनका संबंध है। तो ये स्थिति ऐसी पतन की नहीं है कि वो ऐसे मतलब गिरे, कि उनको जो है गिरना नहीं था, गिरना नहीं चाहते थे और गिरे, तो वो बलपूर्वक गिराया जाता है उनको स्वर्ग से, तो वो दुर्गति है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी
भैया, आपने बताया अक्षय लोकों की उनको प्राप्ति होगी, अक्षय लोक कौन से होते हैं?
अक्षय लोक का मतलब ये होता है कि उन्हीं लोगों को अक्षय भी कहा जाता है। जो सामान्य लोग होते हैं तो जब पुण्य करते हैं और अपने पुण्यों को भोगना चाहते हैं तो उन ऊंचे उच्च लोगों में जाते हैं, अपने पुण्य भोग लेते हैं और छीण पुण्य छीण करके नीचे आते हैं। लेकिन वही लोग उनके लिए अक्षय हो जाते हैं कि जिनके पुण्य छीण ना हो। तो अगर चेतना आपकी इतनी शुद्ध है, कृष्ण भावना भावित चेतना हो जाए आपकी, तो ऊपर के लोगों में जाकर के भी आपके पुण्य क्षीण नहीं होंगे, आप समझे। और वो चेतना इतनी शुद्ध होती है कि वो इंद्रिय तृप्ति के विचार उसमें मतलब ज़्यादा हावी नहीं होते हैं और उनकी इंद्रियां बस में रहती हैं, इसलिए उनके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं, तो वही अक्षय लोग बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर के लोगों से फिर वो मतलब भगवान के धाम भी जा सकते हैं, या वो जहें जहाँ भी रहें वो भगवान की इच्छा से वो रह सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में रहें या वैकुंठ में रहें तो कोई अंतर नहीं पड़ता उनके लिए, वे पृथ्वी में रहें या स्वर्ग में रहें या वैकुंठ में रहें, उनके लिए सब कुछ बराबर है, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। और वो हाँ जी
धन्यवाद।
अच्छा आपने तो पूछ लिया, आपका प्रश्न है? ठीक, पहले इनको
जैसे आपने बताया कि जो
जोर से बोलो सुनाई पड़े सर,
जो लास्ट वसु है, वसु नीचे आए पृथ्वी में, तो उद्धव जी के विषय में भी बताया जाता है कि उद्धव जी भी एक वसु हैं, तो उनके आने का कारण
क्या? उद्धव जी वसु नहीं, वसुदेव जो नंद है, ये द्रोण नाम के वसु हैं। नंद महाराज को कहा गया है कि ये जो है द्रोण नाम के वसु हैं और उनकी पत्नी धरा जो है यशोदा है, तो उनके बारे में बताया गया है। जहाँ तक उद्धव जी की बात है, उद्धव जी तो भगवान कृष्ण के सखा हैं और उनके संगी हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं उद्धव जी, है ना। तो द्रोण नाम के वसु ये जो है ये नंद महाराज, नंद महाराज के शरीर में है द्रोण नाम के वसु। नंद महाराज तो जो है भगवान के नित्य पिता हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, लेकिन द्रोण नाम के वसु भी नंद महाराज के शरीर में हैं। इसी प्रकार से भीष्मदेव भी जो है महाभागवत हैं, द्रोण नाम का वसु उनके शरीर में है। तो कभी कभी एक शरीर में दो आत्माएं भी होती हैं, है ना, ऐसा भी है। और कोई प्रश्न? हाँ ठीक है।
गंगा जी के बारे में वर्णन आता है कि वो भगवान विष्णु की पत्नी है, तो उनको एक सरस्वती के श्राप के जैसे नीचे आना पड़ा, तो ये कैसे समझे कि वो किसी और की पत्नी बन रही है?
भगवान की पत्नी है गंगा जी। इनका तो बहुत विस्तृत इतिहास है, गंगा जी का बहुत विस्तृत इतिहास है कि गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के साथ ही हैं, फिर राधा रानी के श्राप से फिर ये जो है वैकुंठ में आई और भगवान विष्णु की पत्नी बनी, और फिर जो है सरस्वती के साप से फिर उनको पृथ्वी में आना पड़ा। तो इस तरह से फिर भगवान भी उस लीला में ये कहते हैं कि तीन पत्नियां अगर होंगी तो जरूर कलह होगा, तो तीन पत्नियां हैं भगवान की, लक्ष्मी सरस्वती और गंगा, अवश्य ही कलह होगा और मैं तीनों का त्याग करता हूँ। तो भगवान ने जो है कहा कि मैं तीनों का त्याग करता हूँ, है ना। तो गंगा जी को उन्होंने मतलब आदेश दिया कि तुम एक अंश से जो है शिव जी की जटाओं में निवास करो, एक अंश से समुद्र की पत्नी बनो, इस तरह से आदेश दिया गंगा जी को। और सरस्वती को भी कहा कि एक अंश से तुम ब्रह्मा जी की पत्नी बनो, इस तरह से आदेश दिया। लेकिन लक्ष्मी जी को जो है मतलब भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्वभाव में किसी प्रकार का दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर सब प्रकार का समर्पण है, सब प्रकार का जो है गुण है, जैसे तुम जो है मतलब मेरे साथ ही रहो, लेकिन हाँ एक अंश से तुम तुलसी वृक्ष के रूप में रहो। तो लक्ष्मी जी जो है एक अंश से तुलसी वृक्ष बनी। तो भगवान अगर मतलब त्याग करते हैं अपनी पत्नी का, तो वो जो है किसी भौतिक जन्म भी किसी की पत्नी बन सकती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की पत्नी बनती हैं तो वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते, ठीक है ना, वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते जिनकी पत्नी बनती हैं, ठीक है ना। और कोई? ठीक है, धन्यवाद। श्री जन्मसप्तमी महामहोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधिका रमण भगवान की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय।